नमस्कार आदाब दोस्तों, पढ़ाई का बहुत सारा तनाव है, सवाल है लेकिन जवाब नहीं, परीक्षा का डर सता रहा है, दिल और दिमाग दोनों घबरा रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज क्वेश्चन मार्क की पाठशाला में लगेगी मनोविज्ञान की क्लास। तो चलिए सुनते हैं अपने फेवरेट शिक्षक की जरूरी बातें।
मैं उमा सा रामदेसी यादव साइंस कॉलेज व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी आपको सीखने के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊँ। सीखने की क्रिया कई बातों पर निर्भर करती है। यह समस्या शिक्षा शास्त्रियों आदि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक मनुष्यों के सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करके शिक्षण प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया है। दूसरी ओर शिक्षा शास्त्री या शिक्षक इन कारकों का अध्ययन करके शिक्षा को अधिक सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वैयक्तिक कारण। सीखना या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक ऐसे हैं जो सीखने वाले व्यक्ति में ही रहते हैं। ऐसे कारकों को वैयक्तिक कारक कहते हैं। इनके प्रमुख कारण हैं। पहला है बुद्धि। सीखने की क्रिया पर बुद्धि का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बौद्धिक योग्यता तथा सीखने की क्षमता के बीच घनात्मक सहसंबंध है, परंतु यह विश्वास गलत है। यह सही नहीं है कि बुद्धि से सीखने की योग्यता बढ़ती है, परंतु यह भी सही नहीं है कि बुद्धि बढ़ने के साथ साथ सीखने की क्षमता नहीं बढ़ती है। एक निश्चित सीमा के बाद जब किसी चीज के सीखने पर बुद्धि का प्रभाव गौण हो जाता है। यह सही है कि सीखना हमेशा बुद्धि से संबंधित नहीं होता। उडरो ने अपने अध्ययन में देखा कि कुछ परिस्थितियों में सीखने की योग्यता तथा बौद्धिक योग्यता में कोई संबंध नहीं होता। दरअसल किसी चीज के सीखने पर बुद्धि के अलावा कई अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वास्तविक आयु। सीखने की योग्यता पर आयु का प्रभाव पड़ता है। आयु बढ़ने से परिपक्वता तथा बुद्धि में वृद्धि होती है। किसी चीज को सीखने के लिए परिपक्वता एवं बुद्धि की एक विशेष मात्रा आवश्यक है। थॉर्नडाइक के अनुसार विशेष रूप से मौखिक सीखना वास्तविक आयु पर निर्भर करता है। लगभग 5 साल की आयु से मौखिक सीखना की योग्यता संभव होती है और यह योग्यता 17 से 20 साल तक की बढ़ती रहती है। उसके बाद यह योग्यता स्थिर बन जाती है और लगभग 50 साल की आयु तक इसमें थोड़ी कमी भी देखी जाती है। 50 साल के बाद इस योग्यता में तेजी के साथ हास भी होता है और व्यक्ति नई चीजों को सीखने में सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है प्रेरणा। किसी विषय को सीखने पर सीखने वाले की प्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति में सीखने की इच्छा अधिक प्रबल होती है वह जल्दी सीखता है और भूलें कम होती है। जिस व्यक्ति में सीखने की इच्छा का अभाव होता है वह देर से सीखता है, गलतियां भी अधिक होती है। प्रासंगिक सीखना की तुलना में अभिप्रेत सीखना श्रेष्ठ होता है। जैसे पोस्टमैन के अध्ययन से इसका प्रमाण मिलता है कि थॉर्नडाइक ने अपने अध्ययन में देखा कि दंड की अपेक्षा पुरस्कार बच्चों के सीखने के लिए अधिक उपयोगी है। हरलॉक ने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों की सफल शिक्षा के निंदा की अपेक्षा प्रशंसा अधिक लाभदायक होता है। शिक्षण का यह कारक अन्य कारकों की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पूर्वानुभव। किसी सामग्री को सीखने का गहरा संबंध व्यक्ति के पूर्वानुभव से है। पूर्वानुभव का प्रभाव सीखना पर ट्रांसफर इफेक्ट के रूप में पड़ता है। जैसे नई परिस्थिति में की जाने वाली प्रतिक्रिया पहली प्रतिक्रिया के समान होती है तो घनात्मक इफेक्ट देखा जाता है। लेकिन जब दोनों परिस्थितियों की प्रतिक्रिया विपरीत स्वरूप की होती है तो नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। इस तरह जब दोनों प्रक्रियाओं के बीच किसी तरह का संबंध नहीं होता तो शून्य प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है चिंता। व्यक्ति की सीखने की योग्यता पर उसकी चिंता का प्रभाव पड़ता है। चिंता वास्तव में एक प्रेरणा का काम करती है, इसलिए व्यक्ति में सीखने की योग्यता बढ़ जाती है, लेकिन अधिक चिंता नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात यह है कि चिंता के प्रभाव की क्षमता का निर्धारण सीखे जाने वाले विषय के स्वरूप पर ही आधारित है। जैसे स्पेंस के अनुसार सरल कार्य को सीखने के लिए चिंता अधिक उपयोगी। उन्होंने देखा कि साधारण पलक अनुकूलन अधिक चिंतित प्रयोजनों में जल्दी स्थापित हुआ। स्पिलबर्गर ने अपने अध्ययन में देखा कि विद्यालय शिक्षण के लिए अधिक चिंता बाधक है। नेक्स्ट है सीखने की विधियाँ। किसी विषय को सीखने की कुशलता पर सीखने की विधियां का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति सीखने की सफलता दूसरी बातों के अलावा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस विधि से सामग्री को सीख रहा है। इस संबंध में विराम विधि या अविराम विधि, पूर्ण विधि या अंश विधि इत्यादि मुख्य है। नेक्स्ट है सामग्री की अर्थपूर्णता। सीखने की योग्यता वास्तव में सामग्री की अर्थपूर्णता पर भी निर्भर करती है। मौखिक सीखना में जिन पदों या शब्दों का उच्चारण आसान होता है उन्हें व्यक्ति जल्दी सीख लेता है। कठिन उच्चारण वाले पदों या शब्दों को सीखने में अधिक कठिनाई होती है। इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे पोस्टमैन एंड फिलिप्स ने कहा कि भेदीकरण अधिक होने पर सीखना आसान बन जाता है, लेकिन जब सीखना सामग्री में विभेद या अलग होने की क्षमता कम होती है तो सीखने में कठिनाई होती है। निरर्थक पदों को सीखना अधिक कठिन होता है क्योंकि उनमें अर्थपूर्णता का अभाव होता है। किसी विषय को अर्थपूर्णता साचित की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात सामग्री पूर्णता जितनी अधिक होगी सीखने की रफ्तार उतनी ही तेज होती है। इसलिए निरर्थक पदों की तुलना में हम अर्थपूर्ण शब्दों को जल्दी सीख लेते हैं। अर्थपूर्णता का आधार संगठन है। अर्थपूर्ण शब्दों में संगठन होता है इसलिए हम उन्हें आसानी से सीख लेते हैं। निरर्थक पदों में संगठन का अभाव होता है इसलिए सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। संगठन के दो प्रकार है, पहला है प्रत्यय श्रेणी, दूसरा है प्रत्यय अनुक्रम। प्रत्यय श्रेणी का अर्थ है जब वस्तुएं गुच्छा के रूप में संगठित होती है एक प्रत्यय का निर्माण होता है जिसे सीखने में सुविधा होती है। नेक्स्ट है प्रत्यय अनुक्रम का अर्थ है कि वस्तुएं इस तरह संगठित हो जाती है कि तीन चार स्तरों का एक क्रम बन जाता है जिससे सीखना आसान बन जाता है। नेक्स्ट है परिणाम का ज्ञान। कोई काम सीखते समय थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी प्रगति का ज्ञान होने पर सीखना सरल हो जाता है। जैसे यदि हम 10 बार आप किसी काम को करें और हर काम बार करने के बाद आपको बतला दिया जाता है कि इस बार आपको इतना समय लगा और इतनी गलतियां हुई, तो आपके अंदर यह भाव काम करने लगेगा कि अगली बार और भी कम समय लगे और कम गलतियां हो। इस प्रयत्न से जब आप दूसरा प्रयास करेंगे तो निश्चय ही आप कम समय में बिना गलती किए वह काम करना सीख जाएंगे। दूसरी ओर जब सीखने वाले को अपने काम के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता तो वह निष्क्रियता का शिकार हो जाता है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक सक्रिय कोशिश नहीं करता, फलतः उसे सीखने की अपेक्षा से अधिक समय लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीखने की क्रिया कई कारकों पर निर्भर करते हैं। अब हम आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बताऊंगी। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी शिक्षण अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने के किसी दूसरे कौशल या विषय को सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से है। बच्चे को हिसाब बनाना सिखाते हैं तो पहले सरल जोड़ सिखाते हैं, इससे उसे कठिन जोड़ और बाद में गुणा के हिसाब बनाने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत यदि बच्चे ने हिंदी अंकों में हिसाब बनाना सीखता है और उसे अंग्रेजी अंकों में हिसाब बनाने को कहें तो शुरू में कुछ दिक्कतें तो होंगी। इस तरह एक के सीखने का प्रभाव दूसरे विषय या व्यवहार के सीखने पर पड़ता है। स्पष्टतः यह शिक्षण अंतरण या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, दूसरा है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग यानी धनात्मक स्थानांतरण, जब पहले का सीखना वर्तमान के सीखना में सहायक होता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब एक परिस्थिति या विषय का सीखना दूसरी परिस्थिति या विषय के सीखने में सहायता करता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण की संज्ञा दी जाती है। हिंदी सीखने में के बाद बंगला सीखने में आसानी होती है क्योंकि हिंदी सीखना बंगला सीखने में सहायता करता है, तो अतः इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। यह स्थानांतरण शरीर के दो अंगों के बीच होता है जिसे बायलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो यह मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट में बायलेटरल स्थानांतरण के प्रभाव को दिखाने के लिए प्रयोज्य द्वारा पहले बाएं हाथ से दो प्रयत्न लिए जाते हैं, फिर दाएं हाथ से अभ्यास कराया जाता है, अंत में पुनः बाएं हाथ से दो प्रयत्न कराए जाते हैं। तो बाएं हाथ से दोनों अवस्थाओं में किए गए कार्यों की तुलना की जाती है तो देखा जाता है कि पहली अवस्था की तुलना में दूसरी अवस्था का शिक्षण मात्रा तथा गुण दोनों में श्रेष्ठ होता है क्योंकि दाहिना हाथ के शिक्षण ने बाएं हाथ के सीखने की योग्यता को बढ़ा दिया। इसे प्री टेस्ट आफ्टर टेस्ट डिजाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर। जब एक परिस्थिति या विषय का सीखना दूसरी परिस्थिति या विषय के सीखने बाधक होता है तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। निरर्थक पदों की एक सूची को सीख लेने के बाद दूसरी सूची को याद करने में अधिक कठिनाई होती है। पहली सूची का सीखना दूसरी सूची के सीखने में बाधा डालता है। यहाँ पहली आदत दूसरी आदत के निर्माण में बाधक होती है, इसलिए नकारात्मक स्थानांतरण को हैबिट इंटरफेरेंस भी कहते हैं। मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट में प्रयोज्य को एक दिशा में चित्रण का अभ्यास कराए और फिर विपरीत दिशा में चित्रण कराए तो पहली आदत दूसरी आदत के निर्माण में बाधक होगी और चित्रण करना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्ड सॉर्टिंग एक्सपेरिमेंट में भी मौलिक अवस्था के अभ्यास में कारण जो आदत बन के कारण बनती बनती है वह विपरीत अवस्था में बनने वाली आदत में बाधा डालती है। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर यानी शून्य स्थानांतरण। जब एक विषय या परिस्थिति का सीखना दूसरे विषय या परिस्थिति के सीखने में न तो सहायक होता है न तो बाधक, इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पहले शिक्षण का प्रभाव वर्तमान के शिक्षण पर किसी रूप में नहीं पड़ता। जैसे गेंद उछालने या तैरने सीखने का प्रभाव अंग्रेजी या हिंदी सीखने में न तो सहायक होता है न बाधक, यही शून्य स्थानांतरण होता है। सही अर्थ में शून्य स्थानांतरण को स्थानांतरण करना ही गलत है। जब एक विषय के शिक्षण का प्रभाव दूसरे के शिक्षण पर पड़ता ही नहीं तो इसे स्थानांतरण कैसे। इस प्रकार सही अर्थ में स्थानांतरण के केवल दो प्रकार है, धनात्मक तथा नकारात्मक स्थानांतरण। इन सभी का विश्लेषण करने पर हमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं। जब दोनों कार्य उत्तेजना और अनुक्रिया एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनके बीच विशिष्ट अंतरण नहीं होता। दूसरा है यदि दोनों कार्यों के उत्तेजना समान हो और अनुक्रियाएं भी समान हो तो अत्यधिक मात्रा में अनुकूलन अंतरण होता है। नेक्स्ट है जब दोनों कार्यों के उत्तेजना समान होते हैं लेकिन अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं तो थोड़ी मात्रा में अनुकूल अंतरण होता है। जब दोनों कार्यों के उत्तेजना भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन अनुक्रियाएं एक समान होती है तो इस दशा में अनुकूलन अंतरण होता है।
तो दोस्तों ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।